एक ऐसे लोकतंत्र में जो दल व्यवस्था पर आधारित होता है, संसद अक्सर दबाव और तनाव के बीच काम करती है, लेकिन इसके बावजूद हाजिर जवाबी, वाकपटुता और मजाहिया आदान प्रदान के उदाहरण यदा कदा मिल ही जाते हैं। पीलू मोदी इन सब के चैंपियन थे। 70 के दशक में भारत में जो कुछ भी गलत हो रहा था, उसका ठीकरा अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सिर फोड़ने का एक फैशन सा बन चुका था। पीलू मोदी ने आओ देखा न ताओ, वो एक दिन राज्यसभा में अपने गले में एक प्ले कार्ड लटकाए पहुंच गए, जिस पर लिखा था IMA CIA एजेंट। पीलू मोदी को नजदीक से जानने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान याद करते हैं।
उनकी खूबी ये थी कि खुद अपना मजाक बनाते थे। रियल ह्यूमर होता है वो यही होता है जहां आदमी खुद अपने आप अपना मजाक बना सके। जैसे मिसाल के तौर पे एक जमाने में लीडरों में एक होड़ लगी हुई थी कि कोई भी चीज उनकी मर्जी के खिलाफ हो तो कहते थे कि ये CIA का काम है। तो पीलू मोदी साहब ने बैज बनवाए और खुद अपने बैज लगा के IMCIA एजेंट पार्लियामेंट में पहुंच गए और उस पूरी चीज का मजाक बना दिया।
पीलू मोदी की विनोद प्रियता का ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि उनके व्यक्तित्व में गंभीर नहीं था। पीलू मोदी को नजदीक से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजय सांघवी बताते हैं।
सबसे पहले उनके बारे में ये कहूंगा कि बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। उनके पास में ह्यूमर विनोद बहुत था, लेकिन वो स्वभाव से बहुत गंभीर भी थे और राजनीति को बड़ी गंभीरता से देखने वाले इंसानों में से एक वो थे। सबसे पहली बार उन्होंने चौधरी चरण सिंह को जब लोकदल में ज्वाइन हुए, स्वतंत्र पार्टी को मर्ज कर दिया, तो सबसे पहला काम उन्होंने ये बताया था कि चौधरी साहब हमको सबसे पहले गाँव के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स बनाने चाहिए। तो चौधरी साहब हंसने लग गए, बोले पीलू आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो बोले नहीं चौधरी साहब, आप गांव में बड़े हुए हैं लेकिन आपने एक बात नहीं देखी कि ये पब्लिक टॉयलेट्स के अभाव के कारण हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के मेटाबॉलिज्म में जो फर्क पड़ रहा है, जो अंतर आ रहा है, वो उनके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमको यही काम करना पड़ेगा। तब चौधरी चरण सिंह को लगा कि ये तो बहुत गंभीर किस्म का आदमी है और वह हंस भी देते थे कभी कभी। जब चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद में कुछ बता रहे थे तो पीलू मोदी ने उनके मुंह पे कह दिया, चौधरी साहब आपके लिए तो हिंदुस्तान यहाँ से झांसी तक है, उसके आगे तो आपको पता ही नहीं है कुछ।
राजनीतिक रूप से इंदिरा गांधी का विरोध करने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे,
बहुत अच्छे मित्र थे और इंदिरा गांधी पीलू मोदी की किसी स्पीच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब भी पीलू मोदी बोलने वाले होते थे तो इंदिरा जी जरूर अपने हाउस में, राज्यसभा में या लोकसभा में आके बैठ जाती थी और भाषण सुनने के बाद में वो अपने हाथ से चिट्ठी लिख के भेजती थी, पीलू बहुत अच्छा है, और पीलू मोदी उसको जवाब भी देते थे PM। तो एक बार इसी तरह की दो नोकझोंक दोनों के बीच में चल रही थी तो एक में इंदिरा गांधी ने लिखा PM, तो पीलू मोदी ने फिर से वापस जवाब दिया कि IMPM बट परमानेंट, यू आर टेम्पररी। इंदिरा जी हंसने लगी, बोले ये कैसे। तो बोले PM मतलब होता है पीलू मोदी।
आरिफ मोहम्मद खां बताते हैं कि 1969 के कांग्रेस विभाजन के दौरान इंदिरा गांधी उन्हें अक्सर अपने पास बुलाया करती थी।
जब कांग्रेस स्प्लिट हुई, कांग्रेस के दो टुकड़े हुए, उस वक्त इंदिरा जी ने एक स्लिप भेजकर पार्लियामेंट में पीलू मोदी साहब को अपने पार्लियामेंट के ऑफिस में बुलाया। तो पीलू मोदी साहब कहते हैं कि वो इस कदर इतनी चार्मिंग थी और इतना उनका आकर्षक व्यक्तित्व था कि बोले कि फिर मुझे उसी हफ्ते में तीसरे दिन फिर बुलाया और बोले अपने हाथ से चाय बना के दी वगैरह वगैरह। जमाना था जब इंदिरा जी की सरकार अल्पमत में थी, जाहिर है कि कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश होगी कि जो विपक्ष में उस वक्त लोग थे, पीलू मोदी साहब ने भी यही समझा और मुझे लगता है ठीक ही समझा उन्होंने कि इंदिरा जी उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रही। ये पीलू मोदी साहब ने मुझसे खुद कहा है कि तीसरी बार जब मुझे उन्होंने एक स्लिप भेज के और अपने दफ्तर में बुलाया, मैंने जाने से मना कर दिया। और जब वो मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि पीलू आप आए नहीं। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ अगर तीसरी बार मैं आपसे मिलने आता तो मैं आपको सपोर्ट करने लगता। तो ये जुमला पीलू मोदी साहब ही कह सकते थे।
एक बार पीलू मोदी को पता चल गया कि इंदिरा गांधी संसद में बहस के दौरान क्रॉसवर्ड पजल हल करती हैं।
इंदिरा जी जब भी 4 बजे आती थी तो वो साथ साथ में इवनिंग न्यूज के क्रॉसवर्ड लेके आती थी, और मेरी सीट थी वो एग्जैक्टली अपोजिट थी, तो इंदिरा गांधी जो या प्राइम मिनिस्टर जो भी करते थे वो मुझे सब दिखाई पड़ता था ऊपर से। और इंदिरा जी जब वो क्रॉसवर्ड पजल भरती थी, और मुझे भी बड़ा क्रॉसवर्ड पजल भरने का शौक था, तो मैं देखता था, मुझे बड़ी जलन होती थी कि इंदिरा जी 4 बजे लेके आती है और मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, ये कैसे है। तो मैंने पीलू मोदी से बात की, पीलू मोदी ने कहा अगली बार वो भर रही होगी तो तुम बता देना। तो मैंने अपना बेंच गिराया, आवाज़ हुई, पीलू मोदी को बता दिया कि वो क्रॉसवर्ड भर रही है। तो पीलू मोदी खड़े हो गए, सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो स्पीकर संजीव रेड्डी थे, उन्होंने कहा व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, देर इज़ नो मैटर ऑन हैंड। तो बोले नो सर, आई वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन, कैन एनी मेंबर फिल इन द क्रॉसवर्ड पजल्स इन द हाउस। तो इंदिरा जी ने नीचे से शो करके रह गई और चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर के बाद में पीलू मोदी को उन्होंने चिट्ठी भेजी, हाउ डिड यू नो। पीलू मोदी ने जवाब लिखा, आई हैव माई स्पाइज ऑल ओवर।
1975 में आपातकाल में अन्य विपक्षी नेताओं की तरह पीलू मोदी को भी गिरफ्तार कर रोहतक जेल भेज दिया गया। वहां सबसे बड़ी समस्या थी पीलू मोदी की पसंद का शौचालय न होना। पीलू को नजदीक से जानने वाली मालविका सिंह अपनी किताब परपेचुअल सिटी ए शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ दिल्ली में लिखती हैं,
जब पीलू मोदी को 26 जून 1975 को गिरफ्तार कर रोहतक जेल भेजा गया तो उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब था वहां पश्चिमी स्टाइल के कमोड का ना होना। उन्होंने इंदिरा गांधी को संदेशा भेज अपनी परेशानी बताई। उसी शाम बैठकर पॉटी करने वाली जगह के दोनों ओर सीमेंट का प्लेटफॉर्म बनवाया गया ताकि पीलू को शौच क्रिया में कोई तकलीफ ना हो। इंदिरा गांधी की शख्सियत की ये अजीब बात थी कि वो अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में भेजने के बावजूद उनसे हमेशा संपर्क में रहती थीं।
रोहतक जेल का ही एक दिलचस्प किस्सा विजय सांघवी सुनाते हैं, जब वो पीलू के पास उनके कुत्तों को लेकर जाया करते थे।
जब पीलू मोदी जेल के अंदर ले जाए गए तो उसके बाद में वो अकेले रहते थे, तो मैं उनके 3 कुत्ते थे बहुत अच्छे, सबसे छोटा था छोटू और दूसरे, तीनों के तीनों आइस सेटर थे, उन तीनों को मैं लेके जाता था, बड़े फेरोशियस डॉग्स थे। रोहतक के जेल में जाता था कुत्तों को लेके, और जैसे कुत्ते दिखाई पड़ते थे तो जो सेंट्रीज जो होते थे वो सब भाग जाते थे और मैं और पीलू मोदी अकेले बैठ के बात करते थे। तो मैं उनको बताता था, टू माई सरप्राइज पीलू मोदी और बाकी के जो इनमेट्स थे वहाँ पे प्रिजनर पॉलिटिशियन, वो सबको बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में पूरा पता था। मैं अपने साथ साथ में उनका खाने पीने का भी सामान ले जाता था और बहुत सारी किताबें लेके जाता था। तो बहुत सारी किताबों के ऊपर अशोक मेहता के, बिजू पटनायक के, उन लोगों के सिग्नेचर्स है कि तुमने अच्छा काम किया हम लोगों को।
पीलू मोदी बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज थे, लोग उनकी दावतों में शामिल होना अपनी खुशकिस्मती समझते थे। मशहूर पत्रकार सुनील सेठी को कई बार उनके घर खाने पर जाने का सौभाग्य मिला था।
मैं पार्लियामेंट कवर करता था 70s और 80s में, इमरजेंसी डिक्लेयर होने से पहले, और काफ़ी बार मैंने उनको इंटरव्यू किया। एक दो बार ही उन्होंने मुझे घर पे खाने पे भी बुलाया। बहुत क्रिस्प सफ़ेद स्टार्च्ड कल्फ लगा हुआ, हमेशा सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहनते थे और सफ़ेद शॉल पहनते थे, और उनकी मेहमान नवाजी कोई नहीं भूल सकता। क्या खाना खिलाते थे, चाहे पारसी खाना हो, चाहे यूरोपियन फूड हो, चाहे हैदराबादी हो, उनको खाने का बहुत शौक था। और उनकी सबसे यादगार ये है कि ही हैड अ फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत मजाक करते थे पार्लियामेंट में भी और बाहर भी। बहुत आर्टिकुलेट और ओपिनियनेटेड इंसान तो थे ही, मगर बहुत पर्सनली वो शौकीन और रंगीन इंसान थे। ही वॉज अ लीडर ऑफ द पारसी कम्युनिटी, बहुत पढ़े लिखे थे। देहरादून के मशहूर डून स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी, फिर उसके बाद आर्किटेक्चर पढ़ने गए अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले कैलिफोर्निया, मगर शुरू से उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत था।
पीलू की पूरी कोशिश रहती थी कि विजय सांघवी भी उन्हीं की तरह मांसाहारी भोजन का लुत्फ उठाएं, लेकिन सांघवी इसके लिए तैयार नहीं होते थे।
मैं जैन होने के वजह से बिल्कुल मैं वेजिटेरियन आदमी था, कभी मैंने नॉन वेज नहीं खाया था, और पीलू मोदी हमेशा मुझे नॉन वेज खिलाने की कोशिश करते थे। कभी कभी वो खुद अच्छा बनाते थे, चिकन बनाते थे, कहते विजय ये खा लो तुम, मैं कहता था नहीं। 1971 के वॉर में मुझे जाना पड़ा अमृतसर के बॉर्डर के ऊपर। पहले दिन मैंने काम कर लिया और काम करने के बाद में जब मैं वापस लौट मेस में आया तो मैंने देखा तंदूरी चिकन के सिवा कुछ नहीं रखा हुआ है। तो मैं खाए पिए भी घर वापस चला गया। दूसरे दिन वही 9:30-10 बजे पहुंचा तो मेस के अंदर न ब्रेड थी, न कोको कोला था, न कंपा कोला था, कुछ नहीं था, और तंदूरी चिकन रखे हुए थे। मैं निकलने लगा, जनरल केपी कैंडिडेट थे उन दिनों के अंदर, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि आई डोंट वॉन्ट ए सिख जर्नलिस्ट ऑन माई हैंड बिकॉज आई एम फाइटिंग अ वॉर, इफ़ यू डोंट ईट दिस आई एम गोइंग टू डिस्पैच यू बैक टू दिल्ली। और मुझे बड़ा डर लगा कि मुझे अगर ये डिस्पैच करके वापस भेज देंगे तो सब लोग तो यही समझे कि मैं वॉर के डर से भाग के आ गया हूँ। तो मैंने चिकन के 3-4 पीस खा लिए। आने के बाद में पीलू मोदी को मैंने बताया कि ये हो गया, तो पीलू मोदी ने इमीजिएटली जुल्फिकार अली भुट्टो जो उनके साध्याय थे बर्कले यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको खत लिखा, कांग्रेचुलेशंस, व्हाट आई कुड नॉट अचीव इन 4 इयर्स यू अचीव्ड इट इन 24 आवर्स।
पीलू मोदी के सबसे नजदीक दोस्त थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो। दोनों न सिर्फ मुंबई में साथ साथ बड़े हुए थे बल्कि अमरीका में साथ पढ़े भी थे। जब भुट्टो जुलाई 1972 में शिमला समझौते पर दस्तखत करने भारत आए तो उन्होंने पीलू मोदी से मिलने की इच्छा प्रकट की। पीलू शिमला पहुंचे और शिमला बातचीत के दिलचस्प पहलुओं का जिक्र उन्होंने अपनी किताब जुल्फी माई फ्रेंड में किया।
एक क्षण के लिए जब बिलियर्ड्स रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला तो ये दृश्य कैमरे में कैद करने लायक था, लेकिन सैकड़ों फोटोग्राफरों की उपस्थिति के बावजूद ऐसा नहीं हो सका। मैंने देखा जगजीवन राम बिलियर्ड्स की मेज पर बैठे हुए थे और मेज पर झुकी हुई इंदिरा गांधी शिमला समझौते के मसौदे से माथापच्ची कर रही थी। चौहान और फखरुद्दीन अली अहमद भी मेज पर झुके हुए थे और उन सबको नौकरशाहों के समूह ने घेर रखा था। 10:45 पर जब भुट्टो और इंदिरा गांधी समझौते पर दस्तखत करने के लिए राजी हुए तो पता चला कि हिमाचल भवन में कोई इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर ही नहीं है। आनन फानन में ओबेरॉय क्लार्क्स होटल से टाइपराइटर मंगवाया गया। तभी पता चला कि पाकिस्तानी दल के पास उनकी सरकारी मुहर ही नहीं है क्योंकि उसे सारे सामान के साथ पहले ही पाकिस्तान भेजा जा चुका था। अंततः शिमला समझौते पर बिना मुहर के ही दस्तखत हुए। समझौते से पहले मैंने देखा कि कुछ भारतीय अफसर साइनिंग टेबल पर मेजपोश बिछाने की कोशिश कर रहे थे और हर कोई उसे अलग अलग दिशा में खींच रहा था। उन्होंने सारे इंतजामों की बार बार जाँच की, लेकिन जब समझौते पर हस्ताक्षर करने का वक्त आया तो वहां रखा कलम चला ही नहीं। भुट्टो को किसी और का कलम इस्तेमाल करना पड़ा।
जब पीलू मोदी संसद में भाषण देते थे तो उनके विरोधी भी पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनते थे। चुहलबाजी और मजाक करने की उनकी अदा के भी लोग कायल थे।
हम प्रेस गैलरी के अंदर बैठते थे तो उस वक्त में जो बेंच होता था उसको गिरा देते थे, तो कुछ जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे वो ऊपर देखते थे। ऊपर देखने के बाद में हम इशारे से उनके साथ में बात कर लेते थे। उन दिनों के अंदर हम लोगों को जो पार्लियामेंट का कवरेज होता था उसके अंदर हम स्पीचेस के ऊपर कम ध्यान देते थे और नीचे जो एक्टिविटीज़ जो होती थी उसके वजह से नेक्स्ट मूव क्या होगा उसका पता करने के लिए उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता था। श्याम नंदन मिश्रा जो अपोजिशन के लीडर थे, एक बार डिप्लोमेटिक गैलरी के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या आके बैठी हुई थी, शी वाज़ अ डिप्लोमेट, वो आके बैठी हुई थी और श्याम बाबू लगातार वो लड़की की तरफ देखे जा रहे थे। तो मैंने बेंच गिरा के कहा, पीलू मोदी दिनेश सिंह जी के साथ में बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा ये क्या माजरा, तो मैंने इशारा किया श्याम बाबू की तरफ और फिर डिप्लोमेटिक गैलरी की तरफ। तो पीलू मोदी ने जोर से कहा, श्याम व्हाट आर यू डूइंग, तो श्याम बाबू जेब गए देख लिया, फिर उन्होंने पूछा वो कैसे तुमको पता लगा, बोले ये नहीं बताऊंगा।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।